own kids, those who need them, yeah? बाबा की कितनी अच्छी अच्छी गीत सुने, उड़ के वतन में पहले से ही पहुंच गए थे। और बाबा को भोग जब जब लगाते हैं तो बाबा को यहां नहीं बुलाते हैं, परंतु खुद हम प्यार की शक्ति से, भावना की शक्ति से ऊपर उड़कर भोग कहां जाता, वतन में चलता। तो ये भी एक अनोखी जादू की बात है कि साधारण अन्न ब्रह्म भोजन बन जाता, प्यार से बनाया हुआ, प्यार से भोग लगाने वाले, फिर प्यार से भोग स्वीकार करने वाले, फिर बाद में सफाई और समेटने वाले वो भी सारा ब्रह्म भोजन का कार्यक्रम के अंदर आता। तो दादी सदा कहती है कि ब्रह्मा भोजन ने ही उसको लंबी आयु दी है। यदि ब्रह्मा भोजन न होता तो तन को कहां शक्ति मिलती, मन को तो चलो योग द्वारा शक्ति मिलती, परंतु तन मन दोनों को शुद्ध बनाने वाला है ब्रह्मा भोजन। तो आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, परंतु क्या कोई भी कारण से ऐसे कोई परिस्थिति आती है जिसमें आप को दूसरा कोई अन्न मिले तो आप क्या कहेंगे, हम तो ब्रह्मा भोजन पान करने वाले योगी हैं और सब बातों से किनारा। कितना भी बढ़िया कुछ न क्यों न कुछ बनाया हुआ हो, परंतु अपने लिए नहीं है, बेशक वो एंजॉय करे, परंतु हम तो ब्रह्मा भोजन ही पान करेंगे तो ही तन और मन दोनों ही तंदुरुस्त रहेगा। बाबा की मुरलियां तो बहुत ही सुंदर चलती ही है, परंतु विशेष अव्यक्त बाबा की जो मुरलियां चलती है सार में, जैसे कि सारे पुरुषार्थी जीवन का एक आईना बन जाता, ठीक है ना। अव्यक्त मुरली पढ़ो और खुद को देखो तो पता चलता है कि कहां तक पहुंचे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से वो आईना में देखने को मिलता। तो सीजन के अंदर तो रिविजन कोर्स मूलियां भी चलती रही, और फिर एक्स्ट्रा जब बाबा की पधरामणी का दिन होता था तो ट्रांसमिशन की भी मूलियां चलती रही। तो उसमें भी कमाल तो ये होती थी कि ऐसा नहीं लगता था कि हम वीडियो देख रहे हैं। मधुबन में भी चाहे बाहर भी जब वो देखते हैं ट्रांसमिशन, ऐसे ही लगता है कि बाबा की दृष्टि मिल रही है। किसको ऐसे लगा? इस बार बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे सीजन के अंदर यही बात बताई कि हमको ऐसी ही भासना आई कि बाबा दृष्टि दे रही हैं, क्योंकि जब बाबा की पधरामणी भी सामने होती थी तो उस समय भी इतना बड़ा डायमंड हॉल तो नजदीक तो बहुत थोड़े होते थे, तो वैसे भी नजदीक वालों को भी ज्यादा अनुभव होता था जब स्क्रीन्स को देखते थे तो जब स्क्रीन में बाबा का चेहरा देखते थे तो लगता था कि हाँ बाबा हमें दृष्टि दे रहा। तो उस समय का स्क्रीन्स का देखना और अभी भी स्क्रीन्स का देखना तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता था, परंतु उसमें जो बाबा ने हमें खास ध्यान खींचवाया है वो बातें कुछ कुछ मैं अभी दोहराने चाहती हूँ। एक तो बाबा ने समय की चेतावनी दी है, आज भी बाबा की मुरली में कम समय की बात निकली। तो ऐसे तो नहीं लगता है कि बाबा तो 80 वर्ष से कह रहे हैं कम समय है, तो शायद अभी और भी 50-80 वर्ष चलने वाला है समय, लगता है ऐसे। आप सोचिए कि जिस समय बाबा ने कहा कि दूसरी दिवाली नहीं आएंगी तो सचमुच वही उसी प्रकार से तो दूसरी दिवाली नहीं आई। उस समय की जो भासना थी, उस समय का जो रौनक था, वो उस समय का था, तो वही दिवाली नहीं आई। अनेकों दिवालियां आती रही परंतु वही नहीं आई। परंतु आज तो जब साइंटिस्ट की बातें सुनते हैं, चाहे संसार की और सब बातें देखते हैं, तो अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से 10 साल से अधिक मानवता नहीं चल सकता। लिखत में ये एक कैम्ब्रिज का प्रोफेसर है जिसने 20 साल से सस्टेनेबल स्टडीज पर लेख भी लिखे हैं, रिसर्च भी किया है और पढ़ाया भी है इन बातों पर। तो उसका थोड़े समय पहले मेरे पास वो पेपर आया था, आर्टिकल आया था, और उसने इंडिपेंडेंट पब्लिश किया है, क्योंकि जो उसका जर्नल था जिसमें अभी तक तो रिसेंटली पांच आर्टिकल्स उसके लिख चुके और वो डाल चुके हैं, परंतु ये आर्टिकल उन्होंने नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि लोग घबरा जाएंगे, तो उसने इंडिपेंडेंट वो पब्लिश किया। और उसने फिर ये बताया कि यदि लोगों को मालूम नहीं होगा तो अचानक ये सब बातें आएंगी, तो कुछ तैयारी करने का मौका नहीं बनेगा। यदि आज हम लोगों को शांति से बताएंगे तो फिर उन्हों को कुछ समझने भी आएगा और वो फिर अपनी आंतरिक तैयारी करेंगे। उसने उस कागज का नाम लिखा है डीप एडेप्टेशन, और हम उसको कहेंगे गहराई से परिवर्तन। तो बाबा ने परिवर्तन की बातें कितनी बताई है, क्या क्या हमें ध्यान रखना होगा आज से, ताकि उस समय हमें कोई तकलीफ न हो। घर जाना है ये तो बेशक सही बात है, धरती की स्थिति ही ऐसे नहीं है जो धरती और मानवता को संभाल सके। धरती को माँ कहते हैं, तो धरती माँ ने इतने हजारों वर्षों से मानवता को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, परंतु अभी हम लोगों ने उसकी शक्ति छीन ली है और उसको ऐसे धोखा दिया है, ऐसे उसके ऊपर हिंसा की है जो वो आगे चल नहीं पाती। तो ये तो बहुत लंबी डिटेल की कहानी है, तो वो मैं ज्यादा उसका वर्णन नहीं करती हूँ। लौकिक जो समाचार बताते हैं वो तो आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा। परंतु हमें क्या करना है, एक तो अपनी तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहती कि 6 मास का अन्न आप जमा करके रखो, वो तो चलो होगा, परंतु 6 मास का करो, 1 साल का करो, कितना भी करो, जिस घड़ी तकलीफ आती है सिर्फ 10-15 लोगों को खिलाने की बात नहीं होगी, 200-300 खिलाने की बात नहीं होगी, फिर तो बाबा का दरवाजा खुला होगा, जिन्हों को जरूरत है वो सामने आएंगे। तो वो तो कितना समय तक चलता है क्या मालूम, परंतु वो तैयारी अलग बात है। परंतु आंतरिक तैयारी क्या हमें करनी होगी, अपनी स्थिति को एक रस बनाना होगा। एक रस स्थिति होगी तो फिर हम कोई भी बात की उस समय तकलीफ नहीं लगेंगी। आपने खुद देखा है कि अपनी स्थिति अनुसार कोई भी परिस्थिति में हम उस बात को सहन कर लेते हैं, या तो वो हमें बहुत कठिन बात लगती है। और यदि स्थिति हमारी ठीक नहीं होती तो फिर छोटी भी बात सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं, या उस समय मन में बहुत प्रश्न आते हैं कि मेरे से क्यों हो रहा, हमारे पास ये तकलीफ क्यों आई। तो उस समय जो उलझन आती है प्रश्नों की, तो उस समय हम खुद अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और उस समय हम कहें कि हम औरों को मदद करें, वो हम नहीं कर पाएंगे। हम ये कहें कि कोई और मुझे मदद करे, उस समय कोई सामने होगा ही नहीं मदद करने के लिए, किसके अंदर वो शक्ति ही नहीं होगी जो हमें मदद कर सके। तो हमें अपनी स्थिति को अभी से ही, बाबा कई बार बहुत प्यार से कहते, अच्छा चलो अब तक जो नहीं किया है कोई हर्जा नहीं, वो भी पास्ट को फुल स्टॉप लगा लो, परंतु अभी से यदि कोई भी बात ध्यान पर आई है तो हमें अभी क्या करना है वो थोड़ा विचार करना होता। तो एक तो हमें अपनी स्थिति को ऐसे बनानी है जो बड़ी बात आए छोटी बात आए उसमें हम अपनी स्थिति को एक रस बनाकर रख सके। कैसे? बाबा ने कदम कदम की बातें बताई है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। एक रस स्थिति बनाने के लिए पहले तो हमें अंतर्मुखी होना बहुत आवश्यक होगा। हर बात में हर समय हम अंदर झांक कर देखें कि अंदर हमारी स्थिति क्या है। जब तक हमारी उंगली बाहर होंगी, इस तरह की होंगी, हम कहेंगे ये बात है ये बात है ये बात है ये बात है, तो हम भूल जा रहे हैं कि एक उंगली बाहर और तीन उंगली अपनी तरफ हो रही है। तो हर बात से हमें इशारा मिलता है कि खुद अपने आप को देखे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। और उसमें बाबा ने जो हमें स्वधर्म की बात बताई है, आत्मा अपने स्वधर्म को जानकर जितना जितना स्वधर्म में हम अपनी स्थिति को बनाकर रखेंगे उतना हमारा भविष्य भी हमें सामने नजर आएगा। थोड़ा समय पहले लास्ट वीक बाबा स्वधर्म की बात बता रहे थे, तो उसमें बाबा ने बताया कि जो आपकी नेचुरल बात है वही आपका स्वधर्म है। तो हमारा स्वधर्म घबरावट नहीं है, हमारा स्वधर्म ब्लेम कंप्लेन का नहीं है, हमारा स्वधर्म है शांति पवित्रता सत्यता प्रेम, ये हमारा स्वधर्म है। तो हम ये देख सकते हैं कि किस बात के कारण हमारी स्थिति उससे कुछ हट जाती। तो स्वधर्म हमारा नेचुरल हो जाए, ऐसे नहीं कि किसके साथ प्रेम है किसके साथ अधिकार है, नहीं, परंतु बिल्कुल अपनी स्थिति ऐसे हो जो एक नेचुरल रीति से प्रेम का स्वभाव हो। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है प्रेम। तो जो अपने स्वधर्म के गुण है यदि हम वो सामने रखते हैं और उस अनुसार अपने पुरुषार्थ को देखते हैं कि किस बात के कारण वो स्थिति थोड़ी नीचे ऊपर होती, ज्यादा नीचे ऊपर होती तो बहुत मेहनत करनी है, परंतु चलो अभी बहुत शायद ना भी हो, थोड़ी तो होती ही रहती, कभी कभी कुछ सेकंड्स के लिए कुछ मिनट्स के लिए मन में अशांति आ जाती, आती है कभी कभी आती है रोज आती है तो रोज आती है तो मुरली पांच बारी पढ़नी चाहिए तो फिर रोज से तो कब कब हो जाए, परंतु बाबा तो कब कब भी पसंद नहीं करते। बाबा तो चाहते हैं हमारी स्थिति सदा ऊंची बनी रहे। तो एक तो अंतर्मुखी होकर के हम खुद को अपने आप को देख सकेंगे कि सदा है कब कब है या बिल्कुल नहीं है, तो अंतर्मुखता। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एकाग्रता। एक की याद, और जितना जितना अंतर्मुखी होंगे उतना फिर अपना कनेक्शन उस एक के साथ होगा। अंतर्मुखी नहीं तो फिर अनेकों की जरूरत होती, इससे ये चाहिए, इससे ये चाहिए, इससे ये चाहिए, क्योंकि कोई एक इंसान नहीं है यहाँ जिससे हमें सब कुछ मिले। तो कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, तो बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। परंतु जब अंतर्मुखी है तो पता है कि यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हमको एक से सब कुछ मिलने वाला है। कभी कभी ठोकर खा करके ये बात की पहचान होती, कभी कभी समझ से ये बात की पहचान होती। चाहे कोई भी हो, चाहे ठोकर खा करके भी सीखे, ये भी बहुत बढ़िया, या इतना समझ हो जो पहले से ही ठोकर से ही बच जाए, और पहले से ही हमें इस बात की जानकारी हो कि सब कुछ मुझे एक से ही मिलेगा, तो वो तो और अधिक समझदार कहेंगे। परंतु एक से हमें सब कुछ मिले, तो जितना जितना बुद्धि को, मन को एकाग्र करेंगे उतना हमें सर्व प्रकार की प्राप्ति होंगी। मैं सोच रही थी संडे कब था, कल ही था लगता है, संडे बहुत पहले था तो संडे की मुरली में जो प्रश्न उत्तर चले थे उसमें बाबा ने एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और उसमें भी एकाग्रता से सर्व प्राप्ति हो सकती, एकाग्रता से फरिश्ता बन सकते, एकाग्रता से सर्व विघ्नों को समाप्त कर सकते। आप सोचो कि सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि वो एक कौन, वो एक है सर्वशक्तिवान। अनेकों से जो ना मिले वो एक के द्वारा उसे अधिक हर प्रकार से प्राप्ति हो सकती। तो जब एक के तरफ हमारा ध्यान है और उस द्वारा हम अपना बुद्धि का योग अच्छी तरह से जोड़ते हैं, तो जो बाबा ने बताया है लिस्ट, उसमें तो शायद हम आज कहेंगे कि हाँ कुछ मुझे अनुभव है, कुछ बाकी अनुभव रहा हुआ है करने का। जैसे बाबा ने कहा कि सर्व विघ्न नाश हो सकते हैं एकाग्रता की शक्ति से। क्या छोटे बड़े विघ्न हमारे सामने हैं? तो बाबा कह रहे हैं सब कुछ समाप्त हो सकता है एकाग्रता से। तो ये हमें थोड़ी बातों का अनुभव है, कुछ कुछ प्राप्ति का अनुभव है, कुछ कुछ शक्तियां हमने जीवन में अनुभव की है, तो क्या हम अपनी निश्चय को और उसे बढ़ा सकते हैं? एक कदम और निश्चय को बढ़ाएं और ये विश्वास रखें कि हाँ सर्व विघ्न नाश हो सकते। तो जब हम इस प्रकार से पुरुषार्थ करेंगे, बिल्कुल अपनी बुद्धि को एक बाबा की याद में एकाग्र करना, और दिन भर जैसे आज भी मुरली में था, बाबा ये नहीं कहते कि और सब बातें छोड़ दो, बाबा कहते कि वहां रहते भी सब कुछ करते भी बुद्धि को देखो, बुद्धि इन सब बातों से ऊपर है, उपराम है इन सब बातों से। तो यदि बुद्धि इन सब बातों से उपराम होंगी तो बाबा की याद उस शक्ति के द्वारा वो सब बातें ठीक हो जा सकती। और यदि हम सोचते हैं कि परंतु ये बात है, ये बात है, ये बात, ये ठीक हो जाए फिर हम बाबा को याद करेंगे, बाबा ये कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार नहीं कर सकता। पहले एक कदम आपका, फिर हजार कदम भगवान के। तो पहले एक कदम मैं ये विश्वास रखूं अपनी निश्चय को पक्का करूं कि हाँ, यदि बाबा की आज्ञा अनुसार हमने अपनी बुद्धि को एकाग्र किया तो बाकी सब बातें ठीक हो जाएंगी। तो आप देखते जाएंगे ड्रामा का खेल किस प्रकार से है। तन की, मन की, धन की, समन की, जो भी समस्याएं आती है सब ठीक होती रहेंगी। कैसे? भगवान की शक्ति से। भगवान की शक्ति क्या नहीं कर सकते। लोग तो और ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, परंतु लोगों की एक्सपेक्टेशन में बहुत फिजिकल बातें आ जाती, मटेरियल बातें, परंतु हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा बाबा के साथ इतना संबंध हो जो और किसी की याद न हो, तो हमारी वो भावना है। विघ्न हमारा हटे इस कारण से मुझे बाबा को याद करना है, वो है भक्ति। भगवान के पास जाते हैं भगत, लिस्ट होती है, शॉपिंग लिस्ट। तो बाबा के बच्चों के पास कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है, परंतु हम प्यार से, भावना से बाबा को याद करते हैं, और इस शक्ति द्वारा हम देखते हैं कि कैसे हर प्रकार से सर्कमस्टेंसेस चेंज होते जा रहे हैं, लोगों की बुद्धि पलटती जा रही है। हमारी बुद्धि कैसे पलटी? बाबा की याद के द्वारा। बाबा ने हमारी बुद्धि को भी तो टच करके, पहले हमारी बुद्धि क्या सोचती थी आप याद करो, ज्ञान से पहले क्या क्या सोचते थे, क्या क्या जीवन का लक्ष्य था, कैसे अपने को साधारणता में चलाते थे, और ज्ञान में आए और बाबा ने कैसे बुद्धि को पलट कर पारस बुद्धि बनाकर कितना ऊंचा बना लिया। अभी जिस प्रकार का आपका सोच चलता संसार में, औरों का सोच नहीं चलता। वो संसार की हालतें देख करके घबराती हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, युद्ध करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। परंतु बाबा के बच्चे संसार की सब बातों को देख करके बुद्धि को उससे उपराम रखते और सोचते, जैसे आज बाबा ने कहा, ये तो अंत आया, अंत का भी अभी अंत होने वाला है, अभी तो दृष्टि चली गई आदि के तरफ, अभी और आगे क्या होगा हम जानते हैं, प्रश्न भी नहीं है, हम जानते हैं। रात के बाद अवश्य ही दिन आएगा, क्वेश्चन ही नहीं है। तो हमारे मन में और कोई प्रश्न नहीं आते हैं, क्यों, क्या, कैसे, नहीं मालूम है। रात समाप्त हो, दिन होगा। तो हमारी बुद्धि का इतना फर्क हो गया बाबा की शक्ति द्वारा। तो जो हमारे सामने बातें आ रही है उसमें भी अनेकों का कनेक्शन होता है बहुत करके। तो हमारी योग की शक्ति द्वारा उनों की बुद्धि को भी परिवर्तन करने वाला सर्वशक्तिवान बाप अपना अवश्य काम करके जो बात को ठीक करनी होगी वो फिनिश। बहन बता रही थी जब ग्रह की बात आती है तो ग्रह आता है तो विघ्न आते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न, तो वो भी कहेंगे कुछ हिसाब किताब की बातें हैं, इसके पास नहीं आए, इसके पास आए, क्यों, और कुछ गलती हुई है, किस समय नहीं मालूम, परंतु कुछ गलती हुई है तो वो ग्रहण आए हैं। तो गलतियों को भी समाप्त करने के लिए, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो योग चाहिए। तभी एकाग्रता की शक्ति द्वारा विघ्न विनाश भी हो सकते, सब बातें ठीक भी हो सकती, सब प्राप्तियां भी हो सकती, और आत्मा का जो आगे का स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप, वो भी सहज ही हम धारण कर पाएंगे। और फिर एकाग्रता के बाद हाँ, हमारी स्थिति एक रस बन सकती, the तीन steps और एक रस स्थिति बनेंगी. The next step आएगा एकमत. एकता, एकमत, हम एक की मत पर सब चलने वाले सहज एकता में आ जाएंगे. परंतु ये जो स्थिति है एक रस स्थिति, आप सोचो कि खुद का अपने में विश्वास कैसे आ सकता जब हम खुद अपने को देखते हैं कि स्थिति अब हमारी एक रस है. एक रस वैसे उसी कला को भी बाबा कहते हैं, जब एक रस स्थिति होंगी, स्टेबल स्टेज है तो उड़ सकेंगे, स्टेबिलिटी ही नहीं है तो उड़ कैसे सकेंगे. तो आज बाबा का था कि उड़ कला, ऐसी उड़ान हो आत्मा की जो बिल्कुल फास्ट अपनी निशानी तक पहुंच जाए. तो एक तो चाहिए अपनी एक रस स्थिति जिसमें हम ये देखें कि कोई बात के कारण हमारी स्थिति नीचे ऊपर न हो, और दूसरा फिर चाहिए निर्भय स्थिति. कई बार बाबा ने बताया है कि अन्न की घड़ियां जो सीन्स आपके सामने आएंगे, सहज नहीं होंगी उन बातों को देखना. कभी अचानक सुनते हैं कि 150 मर गए, कभी सुनते हैं 5 मर गए, कुछ न कुछ संसार की बातें होती ही रहती हैं. और ये भी बात बताते हैं कि संसार में जितने भी युद्ध चल रहे हैं भिन्न 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 प्रकार के, और आज के समय को कहेंगे कि शांति का समय चल रहा, परंतु कितने लोग युद्ध में शरीर छोड़े हैं, युद्ध के कारण शरीर छूट रहा है, उसका हिसाब लगाएं तो कितना अंदाज हो जाए. तो ये सब कुछ चल ही रहा है, परंतु अभी हमारे सामने कोई बात ऐसी आए तो हम निडर होकर के उस बात को फेस कर सकते. मुझे याद आता कि जब बहुत समय पहले मैं दादी गुलजार के साथ 74 की बात है, दादी गुलजार के साथ मैं वापस कुंभ मेले से हरिद्वार से जा रही थी वापस दिल्ली. हमारा कुछ कार्य था दिल्ली में जल्दी पहुंचने का, तो दादी गुलजार को भी जल्दी पहुंचना था. तो उन दिनों में तो अपनी गाड़ियां तो बहुत कम थी, तो कोई हायर कार थी, तो ड्राइवर गोपाल भाई सामने बैठे हैं और दादी गुलजार एक तरफ, दादी की ब्राह्मणी दूसरी तरफ और मैं बीच में. और हम सवेरे 4 बजे निकले थे हरिद्वार से, और रोड उस आजकल तो मुझे मालूम नहीं है कैसे है, परंतु समय तो छोटे ही रोड होते थे. तो एक गांव से हम, इनफैक्ट प्रोबेबली गुड़गांव था, परंतु दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर ही हम थे. तो हम गांव से पास कर रहे थे और सवेरे का 6 बजे का समय था तब तक, और धीमी सी लाइट थी. तो एक बुजुर्ग लकड़ी वाला सामने से नजर आ रहा था. अभी उसको याद, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्रॉस करूं रोड या ना करूं. उसका आता था फिर वापस लौटता था, ऐसे 2-3 बारी मैंने देखा. मैं बीच में थी तो सामने से नजर आता था. फिर किस समय उसने क्या डिसाइड किया क्या पता, परंतु गाड़ी ने उसको हिट किया, फिर रिकोशेट करके यहां पर एक 3-व्हीलर थी जो ऑटो रिक्शा होते हैं उसको हिट किया, फिर दूसरी तरफ रिकोशेट होकर झाड़ को लगा, तो वहां पर रुक गई. तो पहले तो, और दादी का सिर जो एम्बेसडर सीट्स होते थे ना, एम्बेसडर कार, सो बेंच की तरह होते थे, तो सामने से दादी को लग गया. तो सबका पहले तो ध्यान था दादी की तरफ कि दादी ठीक है, तो दादी ठीक थी, कुछ थोड़ा सा लगा था परंतु वो ज्यादा नहीं. और फिर पहले तो बिल्कुल उस गांव में शांति थी, कुछ नहीं था, और फिर अचानक आवाज आवाज आवाज, एक्सीडेंट का आवाज के कारण, वाइब्रेशंस के कारण, और सब तरफ आदमी लोग आ गए, निकल गए अपने घरों से। तो फिर मैं थोड़ा झांक के देखा, ड्राइवर नजर नहीं आया, और गोपाल भाई बिजी हो गए दादी के लिए कुछ तैयारी करने के लिए। तो मैं पूछ रही हूँ ड्राइवर कहाँ, किसको मालूम नहीं। फिर मैं देखूं कि सारा झुंड इकट्ठा हो गया है एक तरफ, तो मुझे लगा कि ड्राइवर वहां होगा। उस बीच में बहुत गमसान की आवाज आ रही थी, तो उस समय बाबा की टचिंग क्या कहें, कोई और संकल्प नहीं चला, परंतु मैं उस बीच में घुस गई और सफेद साड़ी देख करके, बहन देख करके वो हट गए। तो बिल्कुल बीच में वो भाई खड़ा था, और मुझे हिंदी भी उस समय बहुत कम आती थी, तो मैं सिर्फ उसको उन्होंने ये कहती थी, ठहरो ठहरो ठहरो, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। ये भी मुझे मालूम नहीं था कि पुलिस आ रही है या नहीं, परंतु उस समय उनको शांत करने की जरूरत थी, और वो मार पिटाई कर रहे थे ड्राइवर को, परंतु मैं उसके सामने जाकर के खड़ी रही। तो उस समय हाँ सचमुच कुछ दो मिनट तीन मिनट के बाद पुलिस आ गई, उसको लेके गए तो ड्राइवर को। तो फिर जो दो तीन मिनट का ही चांस था उसकी, नहीं तो बुरी गति होती थी, तो उस समय तो वो बच गया। फिर तो हम लोग वहां पर जो कागज वगैरह का काम था वो करके वापस आ गए दिल्ली, तो ड्राइवर भी बच गया। कहने का मतलब कि उस समय बाबा की टचिंग, और मैं समझती उसको बिल्कुल, क्योंकि बूढ़ा तो शरीर छोड़ा, तो ड्राइवर भी शरीर छोड़ने वाला था जिस तरह से वातावरण था। तो जब बुद्धि बाबा के पास है तो उस समय ये संकट नहीं आता कि क्या करेंगे। उस समय बिल्कुल स्थिति ऐसे होती जो बाबा की शक्ति है, और मालूम है कि कोई अपने लिए संकल्प नहीं चलता कि मैं बचेंगी या नहीं बचेंगी, बाबा की शक्ति है। और उस समय ऐसे है जो अन्य के लिए भी हमें क्या करना है वो बहुत सहज ही ऑटोमेटिकली वो कार्य होता। तो ये तो एक बात, परंतु कहां पर भी कोई भी बात में यदि डर के कारण हम घबरावट में आते हैं, तो बाबा मुझे कुछ टचिंग दे रहा है, परंतु मेरा मन इधर उधर घूम रहा है, तो मैं बाबा की टचिंग को पकड़ नहीं सकेंगी। तो जो बाबा कई बार कहते हैं कि क्लीन क्लियर इंटेलेक्ट, तो क्लीन हाँ वो तो हम जानते हैं कि विकारों का प्रभाव न हो, उसमें हमें पुरुषार्थ करना है, ताकि दिल को बुद्धि किसके पृथ्वी कोई और बात की भावना नहीं, सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट और कल्याण की भावना, हरेक के लिए बस यही भावना। तो कहेंगे कि बुद्धि दिल को क्लीन है, और क्लियर उसमें मुझे लगता है कि कई बातों का अभी तक हमारी बुद्धि पर प्रभाव आता। कभी जो हमारे मित्र है, जो हमारे साथी है, जो हमारे एजुकेशन की बातें हैं, जो हमारा कारोबार होता, इन सब बातों का बुद्धि के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव होता। हमारी एजुकेशन के हिसाब से मुझे मालूम है कि अभी मुझे क्या करना है, परंतु एजुकेशन के हिसाब से नहीं, बाबा का प्रभाव, बाबा क्या चाहता है, उस बात को हम सामने रखें। मेरी मित्र क्या कह रही हैं, मेरे साथी क्या कह रही हैं, बुद्धि को इन बातों से अलग रखें, बुद्धि को इनसे काम रखें। जो पास्ट की बातें बीत चुकी पहले ऐसे हुआ था तो अभी भी ऐसे होने वाला है? नहीं, पहले ऐसे हुआ था, ठीक है, जो हुआ, परंतु जरूरी नहीं है कि अभी वो ही बात होंगी। नहीं, मालूम नहीं है अभी क्या होने वाला है। अभी मुझे क्या करना है? बाबा का प्रभाव होगा बुद्धि के ऊपर, तो फिर उस अनुसार हम सोचेंगे, फिर उस अनुसार हम कदम उठाएंगे। तो क्लीन और क्लियर इंटेलेक्ट, कोई प्रकार का भी प्रभाव बुद्धि पर न हो, तो फिर हमारे पास वो क्लियर मैसेज होगा बाबा का कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो ये दो बातें, डर नहीं, परंतु डर होता है जब बुद्धि हद में होती। जब बुद्धि बेहद में होती, बाबा के पास होती, तो मालूम है जो कुछ होगा उसमें कल्याण ही होगा। तो ये क्वेश्चन नहीं आता क्यों, क्या, कैसे होगा, क्या होगा, अभी अभी मुझे क्या करना है। नहीं, तो डर तो कईयों को तो स्पाइडर से भी होता, कभी कभी बहने बहुत बड़ी बड़ी मारती है, क्या हुआ क्या हुआ, छोटा सा स्पाइडर है। परंतु कई बारी डर होगा क्योंकि अपना कुछ ऐसे कर्म किया हुआ है, मैं इस जन्म की बात कर रही हूं, मन में वो अभी तक बात है कि वो पता नहीं जो हमने किया है उसका हिसाब तो मेरे सामने आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, वो मेरा सूक्ष्म वो अभी तक मन में बैठा हुआ है। और ये सोचते हैं कि हो सकता वो जिस समय बात सामने आएंगी, मैंने कभी किसको बताया नहीं है, कभी मैंने उसका कुछ वर्णन नहीं किया है, परंतु मेरे मन से वो बात गई नहीं है, मन में वो अभी तक बैठा हुआ है। और मन में ये डर है कि आगे पीछे ये हिसाब चुकतू होने के लिए आएगा जरूर, परंतु उसमें यदि किसी के साथ हमने ऐसे कुछ किया है तो अभी भी माफी ले सकते हैं। और यदि वो व्यक्ति सामने अभी हाजिर नहीं है तो बाकी तो उपाय है, बाबा के साथ इतना हम योग लगाएं जो वो हिसाब चुकतू हो जाए। और यदि एक कुछ ऐसा गलत काम किया है, उसके बदले में क्या हम 100 पुण्य कर्म कर सकते? एक पाप किया है तो उसका 100 पुण्य कर्म अब हम करें तो वो हिसाब ठीक हो सकेगा। परंतु उस बात को भी हम फिनिश करें तो फिर डर की बात नहीं होती। कोई भी बात आएंगी फिर बाबा से शक्ति लेकर के हम उस बात को ठीक कर सकेंगे। तो कहने का मतलब कि एक तो हम अपनी स्थिति को एकाग्र बना के रखें, दूसरा हम अपनी स्थिति को निडर बना करके रखें, और निडर में फिर बाबा के साथ अपनी बुद्धि का योग इतना क्लीन और क्लियर रहे। और फिर तीसरी बात, जितना अभी हो सकता हम सबकी दुआएं लेते रहें। बड़ी दादी से एक बारी हम लोगों ने चिच्चा चल रही थी तो बड़ी दादी से ये प्रश्न पूछा था कि दादी आपका क्या पुरुषार्थ है? तो दादी ने कहा कि मैं ये देखती हूँ कि मेरे से कुछ ऐसा काम न हो जो किसी के मन से मेरे प्रति कुछ बद दुआ निकले, मेरा हरेक के साथ ऐसा व्यवहार और संबंध हो जो हरेक के दिल से दुआएं निकले। आप सोचो कितना ध्यान रखना होगा यदि हम उस स्थिति को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा वरदान दे रहे हैं तो हम वरदानों को भी अपने पास न सिर्फ जमा करके रखें, जमा करने की बात नहीं है, वरदानों को हम जीवन में धारण करते चले। तो बाबा के वरदान परंतु सर्व की दुआएं। तो फिर कोई भी बात होगी बाबा की मदद तो होंगी ही, परंतु परिवार का भी साथ होगा, परिवार का भी हर प्रकार से सहयोग होगा। तो आगे का कितना समय लगता है, क्या लगता है क्या मालूम, परंतु आजकल इस बात पर थोड़ा ज्यादा ध्यान है कि सचमुच ही समय कम है, बहुत ज्यादा समय पुरुषार्थ का अभी नहीं रहा है। परंतु हाँ, बाबा ये भी कहते हैं कि संगम युग के दिन बहुत कीमती है, तो हम ये नहीं कहते कि संगम युग जल्दी फिनिश हो। जब साकार में बाबा थे तो सब कहते थे कि हम चाहते हैं कि ये दिन समाप्त न हो। फिर अव्यक्त बाबा बने तो अव्यक्त बाबा के साथ भी बहुत ही अच्छी सुंदर रौनक के अनुभव की बातें चलती रही, तो भी हम कहते थे कि संगम युग सदा चलता रहे। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि संगम युग जल्दी समाप्त हो, परंतु ये भी हम नहीं कहेंगे कि सदा चलता रहे। एनीवे चल नहीं सकता, संभव ही नहीं है, परंतु हम ये अवश्य कहेंगे कि हम चाहते हैं कि एक एक घड़ी जो संगम युग की बीती उसमें हमारा बहुत कमाई होती रहे। खुद की भी कमाई होगी तो फिर औरों को भी दान देने का कुछ होगा। खुद की कमाई नहीं होती है तो औरों को हम क्या दान दे सकते। और मैं ये कमाई किस बात से, एक एक दिन खुशी का खजाना बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो फिर आप औरों को भी खुशी का दान दे सकेंगे। बाकी तो दादी आ रही है, आप लोगों को समाचार तो मिल ही गया होगा, सबको मालूम है ना दादी आ रही है। और आज के दिन दादी केन्या में है। कौन है जिन्हों का इस जन्म का हिसाब केन्या के साथ है? कम, मैंने सोचा ज्यादा होंगे। तो भी मैं समझती क्वार्टर तो क्लास का केन्या का कनेक्शन है। वैसे युगांडा का भी, केन्या युगांडा दोनों का कनेक्शन किसका है? हाँ, अभी अभी ज्यादा हाथ उठी। लेस्टर का तो विशेष युगांडा का कनेक्शन है ना, राइट? परंतु केन्या का भी कनेक्शन है, तंजानिया। अनेक स्थान है, परंतु दादी सिर्फ गई है इस बारी केन्या। आज तो दादी ज्यादा अनेकों स्थानों पर नहीं जा पाती, परंतु इस बार कुछ समय पहले ही वेदांती बहन को हंसवन ने इशारा दिया था कि यदि वीजा वगैरह का कारोबार ठीक हो जाएगा तो फिर मैं दादी को लेके आएंगी, क्योंकि 15 वर्ष हो गए थे दादी केन्या में नहीं गई थी। तंजानिया में तो पता नहीं कितने वर्ष हो गए, युगांडा में तो शायद बहुत उससे भी अधिक होगा। परंतु एनीवे तो हंसबेन ने वेदांती बहन को कहा था, तो उस समय ही उसने ये नक्की किया था कि ईस्टर रिट्रीट नैरोबी में रखते हैं। फिर सारे अफ्रीका के जो बाबा के बच्चे हैं उनको निमंत्रण दिया था। तो दादी का पक्का नहीं था, दादी का पक्का हुआ है वेंसडे के दिन। वेंसडे के दिन भाइयों को वीजा मिली है और थर्सडे के दिन दादी गई है दुबई। अब दादी की आइटिनरी सुनो, एक दिन के अंदर तैयारी। आप लोगों को भारत जाना होता है कितने दिनों से तैयारी कर रहे और एक जर्नी करके फिर उसके बाद कितने दिन रेस्ट करते हो। तो दादी को तो कुछ इन बातों की मार्जिन नहीं, एक दिन की तैयारी और फिर दुबई। दुबई में बहुत कुछ उन्होंने मनाया दो दिन के अंदर। फिर सैटरडे दिन दादी गई नैरोबी और फिर आज भी केन्या में ही है। फिर दादी वेंसडे रात को वहां से निकलकर यहां थर्सडे सवेरे आकर पहुंचेंगी। और फिर आप लोग अपने टीचर्स के साथ बात करना कि कैसे आना है, वो सारा आपको सेटिंग करके देंगे। बाकी 19th मई को तो अपना कार्यक्रम है, और जो नहीं पहुंच पाते हैं ठीक है, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि वेबकास्ट जरूर होगा, जो प्रोग्राम होगा वहां ग्रैंड मेरिडियन में। और फिर ये भी आप लोगों की तो बहुत समय से तैयारी हो रही है, मिडलैंड्स का प्रोग्राम है शिवानी बहन का, मैं सोचती हूँ कि लेस्टर का नहीं है, राइट, मिडलैंड्स का है। और नॉर्थ में, नॉर्थ में कहाँ है शिवानी बहन का, सबको नहीं मालूम, मैनचेस्टर। तो यहाँ पर लेस्टर में सारे मिडलैंड्स को निमंत्रण है, और फिर वहाँ मैनचेस्टर में सारे नॉर्थ वालों को निमंत्रण है कि वहाँ पर प्रोग्राम में पहुंचे, या प्रोग्राम में नहीं पहुंच सकते हैं तो उसका किस तरह से। लंदन का तो हम लोगों ने सोचा है, वेम्बली का हम वेबकास्ट करेंगे, परंतु मैं समझती हूँ जिनों को इंटरेस्ट होगा वो तो चाहेंगे कि हम खुद ही आए। सिर्फ जी ठीक, गुड, तो उसकी भी फिर दादी आ रही है। फिर उसके बाद लौकिक में तो एक शादी होती है 10 साल के अंदर, राइट, और यहाँ तो एक वर्ष के अंदर कितनी शादियां आ गई। अभी अभी दादी आएंगे, फिर अभी अभी फिर शिवानी बहन आएंगी, फिर अभी कल का समाचार लंदन वालों को भी मैं भूल गई बताना, राजू भाई भी आ रहे हैं सितंबर मास में, उन्होंने खुद ही अपना ऑफर किया, यूरोप में तो कभी वो गए नहीं है तो यूरोप के 2-3 स्थानों पर जाएंगे, और फिर यहाँ मैनचेस्टर और लेस्टर के लिए कहते थे कि जो बाबा के स्थान है वो नहीं देखे हैं, तो राजू भाई भी आएंगे सितंबर मास में, चाली भाई भी आएगा। तो सबके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई उस दिन, जगदीश भाई को जो बात कर रहे थे कि विदेश जाना मीन्स सेवा का भंडार। क्यों? क्योंकि भारत में तो उन दिनों में बहुत टीचर्स थे, बहुत दादियां थी, अभी भी बहुत टीचर्स है, परंतु विदेश में उस समय तो बहुत ही कम टीचर्स थे। तो उस समय जो भी व्यक्ति आता था तो अच्छी तरह से उनको सवेरे से रात तक खूब खूब सेवा लेते थे। तो अभी थोड़ा सा तो फर्क है, परंतु तो भी देखते हैं कि कितनी संख्या है, और इतनी संख्या में से कितने लोगों को बाबा का संदेश मिला है, बहुत थोड़े। तो अभी तो बहुत सारी और सेवा करनी बाकी है, परंतु वो सेवा सफल होंगी अपने योग बल से, अपनी स्थिति से। लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है, 40 वर्ष पहले सेल्फ डेवलपमेंट की कोई ऐसी बात हम नहीं सुनते थे, आज कितने लोग कितनी बातें सुनाते हैं, एक YouTube में ही कितने हजार संख्या से कितनी बातें होती है। तो आजकल तो लोग थक गए हैं सुनकर, अभी चाहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखना। तो बाबा के लिविंग एंजल्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाएंगे तो फिर उनको आकर्षण होगा कि हाँ, यहाँ हम खुद भी कुछ सीख सकते हैं। और आप ये नहीं समझना कि दादी आती है तो सब एक दादी को ही देखते हैं, या शिवानी बहन आती है तो एक शिवानी बहन को ही देखते हैं, नहीं, उन्हों की नजर सब तरफ पड़ती है। बाबा के घर आते हैं तो सिर्फ एक टीचर को नहीं देखते हैं, उन्हों का ध्यान चलता है वातावरण पर और आप सबके ऊपर, आपका आपसी व्यवहार किस प्रकार से है, वातावरण किस प्रकार से है। प्रोग्राम में आते हैं तो देखते हैं कहाँ तक हर एक के चेहरे पर शांति की झलक है, हर एक के चेहरे पर मुस्कुरान है, और यदि वो नहीं देखते हैं तो सोचते हैं कि इनों के पास ही शांति और इतनी खुशी नहीं है तो हम इतनी और आगे मेहनत क्यों करें। तो जब आपका कुछ फल देखते हैं, कुछ प्राप्ति देखते हैं, तो सोचते हैं कि हाँ, यहाँ से हमें भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मुझे पूरा ही विश्वास है कि सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से सफल पूर्वक होगा और उससे भी अधिक अनेक आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। आपस में अपना डिस्कशन चला था कि चाहे शिवानी बहन या कुछ भी और प्रोग्राम हो, हमारा प्राइमरी एम क्या है। तो हमारा भाव ये है कि हर आत्मा, चाहे वो पोस्टर देखे, बस प्रोग्राम में ना भी आए, पोस्टर देखे तो भी उसको शांति की कुछ महसूसता हो, और फिर यदि प्रोग्राम में आए तो भी उसको कुछ अनुभव हो, कुछ प्राप्ति हो, कुछ लेके जाए, और उससे भी आगे बाबा के घर तक पहुंचे तो कुछ और अधिक प्राप्ति हो। तो हर आत्मा को कुछ प्राप्ति हो, ये है हमारा लक्ष्य। तो बाबा के बच्चे प्राप्ति संपन्न स्वरूप बैठे हैं, तो फिर आपके द्वारा भी अनेकों को प्राप्ति होती ही रहेंगी। ओम शांति।